से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओ ओ। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ। Oh.
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ये ग्रंथ के वचन है। तो वो कौन से मात पिता है जिनके हम बच्चे हैं और जिनसे सुख घनेरे मिलते हैं? तो केवल एक शिव बाबा ही है जो घनेरे सुख देते हैं। घनेरे सुख किसको कहेंगे? तन का भी सुख, मन का भी सुख, धन का भी सुख, संबंधों का भी सुख, हर प्रकार से सुख। और बाबा कहते हैं ये सुख तो इस कलयुगी दुनिया में तो कोई माता पिता दे ही नहीं सकते। लेकिन शिव बाबा ही आकर के ये सच्चा सुख देते हैं और धन का इतना सुख देते हैं जो सतयुग में कितना कीचड़ धन होगा, जो द्वापर युग में भी उस धन का कैसे उपयोग हुआ, मंदिर बनाए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोमनाथ का मंदिर। तो इतना धन बाबा तुमको दे करके इतना सुखी बनाते हैं। भक्ति मार्ग में उस समय वो बात थी कि वो आगा खान थे, वो गुरु थे, ये मुसलमानों का गुरु थे आगा खान। तो उनके जो शिष्य थे उनको हीरो में वजन किया था, बहुत प्रख्यात हो गया था, ये न्यूज़ बहुत आ गई थी, हीरो में वजन किया। फिर उसके बाद तो कई शिष्यों ने अपने गुरु को भी वजन किया हीरों में। तो बाबा कहते हैं वो हीरे तो चलो उसमें वजन किया वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाबा तो तुमको अभी ज्ञान रत्न देकर सच्चे हीरे जवाहरात देते हैं। ये ज्ञान के सच्चे हीरे जवाहरात फिर भविष्य 21 जन्मों तक तुम्हारा चलेंगे। वहाँ पर वजन करने की जरूरत नहीं है। तो वजन भी उनको ही करेंगे ना जो पवित्र हो। और बाबा कहते हैं जो नई नई आत्माएं आती है उनका इतना मान होता है, जो ऐसे हीरो में वजन करते हैं। उस समय ये बहुत इसका ये न्यूज़ बन गई थी। तो आज बाबा ने उसके ऊपर बहुत स्पष्ट किया है, शांति भी कैसे मिलती है, सुख भी कैसे मिलता है, जो घनेरे सुख बाबा देते हैं। तो सुनते हैं बाबा की माँ वाक्य आज 20/11/2025 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तो शांति कैसे देते हैं? तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। पहचान मिल गई कि शांति तो तुम्हारे पास ही है तो तुम उसके लिए भटकते नहीं हो। तो मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने के लिए योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। एक तो ज्ञान रत्न देते हैं जिससे हम माला माल बनते हैं, लेकिन हम भगवान के इस समय मददगार बनते हैं। जो ककपन भी उनको देते हैं वो ककपन ही लखपन बन जाते हैं। बाबा ने कहा ना जादूगर है बाबा। क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं, अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खूटता, धन भी कभी नहीं खूटेगा, तो धन भी नहीं खूटता और दुख भी नहीं आता, कभी अशांति भी नहीं होती, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। इतना बाबा सुख शांति हमें दे देते हैं। तो सुख शांति बाबा देते हैं तो हम बाबा को दिल से शुक्रिया गाते हैं, बाबा शुक्रिया शुक्रिया। तो गीत है उस पर, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो दे न सका वो तुमने दिया। तो बहुत सुंदर गीत है ये, तो ये हम बच्चों का ही बच्चे ही गाते हैं बाबा के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है, कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, आपस में मिलते ना तो भी ओम कहते हैं, ओम शांति नहीं कहते, ओम। परंतु कहना चाहिए ओम शांति। क्यों? शांति जरूर कहनी चाहिए। क्यों? सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है मैं आत्मा, बस। वो तो ओम का अर्थ तो बहुत कुछ लंबा चौड़ा बताते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ओम का सरल से सरल अर्थ है मैं आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है, तो पहले है आत्मा पीछे है शरीर। अहम आत्मा मम शरीर, मेरा शरीर, तो पीछे शरीर पहले आत्मा। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान ही शांति धाम है। बाकी कोई जंगल में जाने से शांति सच्ची मिल नहीं सकती। सच्ची शांति मिलनी ही तब है, कब कब मिलनी है, जब घर जाते हैं। दूसरा शांति चाहते हैं जहां अशांति है, ये अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा, वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होगी। घर में भी अशांति नहीं तो बाहर भी अशांति नहीं, और यहाँ कलयुगी दुनिया में घर में भी अशांति तो बाहर तो अशांति है ही है। तो बाबा कहते हैं वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होगी। उसको कहा ही जाता है शांति का राज्य, और यहाँ है अशांति का राज्य। क्यों? क्योंकि रावण का राज्य है तो अशांति का राज्य है। वो है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य शुरू होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं, जो विकारों के वश होते हैं ना उनको कभी शांति नहीं होती है। जब शांति कब होगी? जब आत्मा अपने स्वधर्म में टिके, तो फिर विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो असुरों को कभी शांति होती नहीं, घर में दुकान में, जहां तक अशांति ही अशांति होगी उसको, जिनमें विकार होंगे। पांच विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। अब रावण क्या चीज है ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं, समझते नहीं है कि हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं, वो है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं। किसके लिए करते हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए। दैवी राज्य की स्थापना ईश्वर बाबा करते हैं, अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे, आगे किसके मददगार थे? बाबा का मददगार बनने से पहले किसके मददगार थे? रावण के मददगार थे, क्योंकि विकारों वश कार्य करते थे तो रावण के वशी थे, तो जैसे रावण के मददगार थे। अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति करते हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं, तो तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सत्युग त्रेता में दुख की तो बात ही नहीं है, कोई गाली आदि भी नहीं देते हैं। या तो मुख पर तो लोगों के जैसे गाली ही गाली है ना, और गाली लोग सुनते हैं तो दुख तो होता है, उनको पेन होता है, तो वहां तो कोई गाली वहां नहीं देते। गंध भी नहीं खाते, या तो गंध भी खाते हैं, गाली भी देते हैं। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं, क्या क्या खाते हैं दिखाते हैं। श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी, बहुत प्यार करता था गायों को, तो उसके पिता तो दिखाते, नंदलाल वो तो ग्वाला ही था, हाँ बहुत गायें थी। और फिर श्री कृष्ण को भेजा खेत में, या कैसे भेजा उनको गाय चढ़ाने, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी, पर ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई ग्वाला था। अब उसका पिता तो ग्वाला दिखाते हैं, पर श्री कृष्ण थोड़ी कोई ऐसे ग्वाला था, गऊ की पालना करता था, ऐसे तो है नहीं। नहीं, वहां की गऊ और यहाँ की गऊ में बहुत बहुत फर्क है। वहां की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें भी बहुत सुंदर दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण के साथ गाय कितनी सुंदर दिखाते हैं, जैसे सुंदर देवताएं वैसे सुंदर गायें, देखने से ही दिल खुश हो जाए गायों को देखकर। वो है ही स्वर्ग, यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं, स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते हैं, क्योंकि क्यों वजन करते हैं, क्यों इतना सम्मान देते हैं जो सोने में वजन करते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। तो ज्ञान की इज्जत है, पवित्रता की इज्जत है, कोई शरीर की इज्जत की बात नहीं है। तो उनमें ज्ञान है और पवित्रता है, इसीलिए उसकी इज्जत रखते हैं। तो बहुत, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं, गुणों का प्रभाव इतना क्यों है ये भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है, तो उन आत्माओं का बहुत मान होता है ना। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए प्रभाव होगा। तो सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु ये तो सब खलास हो जाने हैं। कितने भी हीरो से वजन करे, सोने से वजन करे, सब खत्म होना है। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कितनी किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए, ये होगा ना अंत में। तो किसकी दबी रही धूल में, तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं, तो उसके बाद आता ना जो करे सफल ही उसकी होगी जो करे हरि के नाम। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। तो इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित, ऐसे नहीं शरीर नहीं परंतु शरीर सहित जो कुछ देखते हो सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है, विनाश होगा फिर क्या होगा उसके बाद, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। तो भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं, इसलिए क्या गायन है, दुख में सिमरण सब करे सुख में करे न कोई। पर बाबा फिर उसके बाद आता है, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काय को होए। तो बाबा कहते सुख में सिमरण करने की तो जरूरत ही नहीं है, भगवान ने इतना सुख दे दिया जो क्यों फिर उसको याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं सुख में सिमरण सब करे। अब बाप सुख का वर्षा इतना दे देते हैं फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हैं ना, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के सुख घनेरे, सारी सृष्टि के सुख घनेरे थोड़ी होंगे लौकिक माँ बाप, केवल अपने बच्चों को थोड़ा सुख देंगे। अब ये है पारलौकिक मात पिता की बात। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हो, स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को भी इनाम देते हैं। हाँ, बच्चे को तो स्कॉलरशिप मिल गई, पास विद ऑनर हो गया तो टीचर को भी इनाम मिलता है। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे, बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, पास विद ऑनर बनाते हैं, तो तुम बाबा को क्या इनाम देंगे, उनको तुम क्या इनाम देंगे, क्या इनाम देंगे। तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो, सब कुछ मेरा, हाँ शिव बाबा आपका, तो जैसे बच्चा बना लिया ये सबसे बड़ा जैसे उनको तोहफा देते हैं, अपना बच्चा बना लेते हो, इनाम दे देते हो जादूगरी से। कैसे देते हो, जादूगरी से दिखलाते हैं ना, श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा मक्खन का गोला, मक्खन चोरी करके आया था तो माँ ने कहा मुंह खोलो, तो मक्खन का गोला तो देखा लेकिन सारा वो ग्लोब देखा, सारी सृष्टि उस देखी, और कैसे सूर्य चांद सितारे सब उसके मुख में देखे। वो तो हैरान हो गई कि ये सारी सृष्टि इनके मुख में है, तो क्या मक्खन का गोला बन गया, वो सृष्टि बन गई। तो बाबा कहते हैं अब श्री कृष्ण ने तो, श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वो तो माखन आदि नहीं खाएंगे। हाँ बाबा कहते ये भी कलंक लगा लिया श्री कृष्ण पर, जो माखन चोर दिखाते हैं घर घर में जाकर के मटकी फोड़ता था, पर सारी सृष्टि का माखन श्री कृष्ण ने ले लिया, सारी सृष्टि पर उसका राज्य हो गया। तो बाबा कहते हैं वो तो माखन आदि ऐसे नहीं खाएंगे या चुरा करके, वो तो है विश्व का मालिक। तो ये किस समय की बात है, किस समय की बात है, ये है अभी संगम की बात। क्या संगम की बात है, दो बिल्ले लड़े और माखन श्री कृष्ण खा जाएगा, तो ये जैसे ले लिया। तो बाबा कहते हैं वो तो, ये तो अभी संगम की बात है। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं, रशिया अमेरिका, दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिल जाती है। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए, अंग्रेज जब भारत में आए तो कैसे भारत को हड़प लिया, हाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कैसे आपस में ही लड़ाया, आपस में लड़ाया तो वो आपस में लड़े और राजाई अंग्रेजों ने छीन ली भारत से। तो बाबा कहते आपस में लड़ते हैं और मक्खन खुद खा जाते हैं, खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, दुनिया का पौना हिस्सा उसमें अंग्रेजों का राज्य था। तो इसलिए क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। फिर सब देशों ने धीरे धीरे वो कैसे अंग्रेज वहां से गए, तो बाबा कहते हैं दो जैसे तो पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। कितने देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, अंग्रेजों से उनको वो छुट्टी मिली, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। लगभग पौने हिस्से दुनिया के पर अंग्रेजों का राज्य था, ब्रिटिशर्स का राज्य था, पूरे विश्व पर नहीं, कुछ ऐसे हिस्से थे जहां उनका राज्य नहीं था। तो बाबा कहते सारे विश्व पर तो हो भी नहीं सकता, सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और फिर विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, ब्रह्मांड तो परम धाम को बाबा कहते हैं ना, तो विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, ब्रह्मांड तो परम धाम है, विश्व से परे। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सत्युग त्रेता यह चक्र यहाँ स्थूल में होता है, स्थूल वतन में होता है ये चक्र। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। अब ये भी बात है, कई पूछते ना ध्यान में गई तो क्या आत्मा निकल गई, बाबा कहते ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए, ये सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा भी ऐसे साक्षात्कार होते हैं। तो जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं, रिद्धि सिद्धि से जैसे वहां पहुंच गई आत्मा और विलायत की पार्लियामेंट देख ली। यहाँ भी दूरदर्शन है ना, तो दूरदर्शन माना क्या, एक जगह बैठे दूर का दर्शन कर लेते हैं ना टीवी द्वारा। जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं, बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी, दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है। तुम यहाँ बैठ लंदन देख सकते हो, दिव्य दृष्टि से भी देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े, ड्रामा अनुसार कोई टीवी नहीं खरीदनी है, साक्षात्कार में भी बहुत देखते हैं। ड्रामा अनुसार उस समय पर ये साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। तो अर्जुन ने भगवान को कहा कि अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ, तो क्या दिखाया भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप, विष्णु का विराट स्वरूप, कितने मुख उसमें, कैसे उनका देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारा दिखाते विराट स्वरूप में। तो फिर कहा बस, वो उसमें भी कहा बस करो, क्योंकि वो दिखाया उसका मुंह खुला हुआ और सारी आत्माएं सब उसके मुंह में जा रही है, बहुत कुछ भयंकर भी देखा। तो श्री कृष्ण ने कहा, तो अर्जुन ने कहा बस करो भी अपना मोहिनी रूप वापस दिखाओ, तो वो तो डर गया। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था, ये भी नूंद है, अब ये कोई की बढ़ाई नहीं है, ये ड्रामा अनुसार। बाबा कहते मेरी भी क्या बढ़ाई है, मैं कराता हूँ लेकिन ड्रामा अनुसार कराता हूँ, तो कोई की बढ़ाई नहीं है, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया विश्व का प्रिंस बनना गोया मक्खन मिलना, सारी दुनिया का मक्खन उनको मिल जाता है। ये भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है, दुनिया में तो यही ब्रह्मांड मानते हैं, यहाँ सूर्य चांद सितारे हैं, अलग अलग ग्रह है, उसको ही ब्रह्मांड कहते हैं। और बाबा कहते हैं ब्रह्मांड तो परम धाम है, जहाँ ब्रह्म महतत्व में अंडे मिसल आत्मा ही रहती है। तो ब्रह्मांड किसको कहा जाता है, विश्व किसको कहा जाता है? ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो, सूक्ष्म वतन में भी आना जाना साक्षात्कार आदि इसी समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता है। बाबा जब परमधाम से सृष्टि पर आते हैं तो पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं और फिर ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराते, फिर प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया ना, तो बाबा कहते हैं तो 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवता ही नम है, फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नम है, तो सबसे ऊंचा शिव हो गया ना, उनको कहा ही जाता है भगवान। वो देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले, बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य तो होते ही नहीं, वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं। सतयुग में भी 2 भुजा वाले मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र है, अपवित्रता की तो बात ही नहीं है। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, तो तुम बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। क्यों? हम आत्मा इस शरीर द्वारा क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं तुम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को ही देखो, बाबा को ही देखो तो बहुत खुशी रहेगी। देखने में तो शरीर आता है, अब ये भी देखो हम बाबा राज खोलते हैं, बाबा की गोद में जाते थे तो बाबा पहले ये प्रश्न करते थे किसकी गोद में आते हो, ब्रह्मा बाबा की नहीं, ब्रह्मा बाबा को याद करके नहीं आना, शिव बाबा को याद करके गोद में आओ। तो ये शिव बाबा की गोद है, तो जैसे शिव बाबा की गोद में हम जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा याद ना आए। तो बाबा कहते हैं अब देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते हैं, दिखाई तो शरीर ही देगा ब्रह्मा बाबा का। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी, राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी, आत्मा तो बड़ी नहीं दिखाई देगी ना दिव्य दृष्टि से, तो आत्मा तो है ही बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे, और चीजें जो दिव्य दृष्टि से देखते हो तो समझ में आ जाएगी, बड़ी बड़ी होती है। अब आत्मा तो एक सितारा है, सितारा भी का एक बिंदी है, तो बाबा कहते बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है, बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं, तुम तो जन्म जन्मांतर पद्मपति बनते हो, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं करते हम, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। साधारण रीति से इस रथ में बैठ बाबा पढ़ाते हैं, वो भी कोई शो नहीं करते, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, साधारण रीति से इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं। इनका नाम है भागीरथ, ये है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूँ तो तुमको वर्षा कैसे दूं, ये सारे गुण कैसे मैं दूं, ऊपर से तो नहीं दूंगा परम धाम से, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा, ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देगा तो क्या प्रेरणा से पढ़ाएगा, जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ, शिव बाबा सबको प्यारा लगता है, शिव की बहुत पूजा करते हैं, गांधी नेहरू का चित्र भी प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं, उस समय तो नेहरू गांधी का ही बहुत नाम था, नेहरू जी का नाम था, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो जहाँ भी जाओ गांधी जी और नेहरू के ही फोटो होते थे। तो उनके शरीर को याद करते हैं, आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया, गांधी की आत्मा ने भी दूसरा जन्म लिया, नेहरू की आत्मा ने भी दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं, वो तो भूत पूजा हुई ना, विनाशी चित्र को याद करना वो तो भूत पूजा हुई ना। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैग चढ़ाते हैं, अब ये है यादगार, वो चित्र समाधि यादगार है। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का ही है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनवी ने आकर के लूटा था, तुम्हारे पास इतना धन रहता था बाबा, तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं। कितना धन था बाबा कहते हैं, बाबा तुमको रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं करता हूँ, खुद को वजन नहीं कराता हूँ, मुझे बाबा कुशी बाबा को कैसे वजन करेंगे, एक हीरा भी नहीं आएगा, खुद को वजन नहीं कराता हूँ, मैं इतना धनवान नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया कल मर जाएंगे, आगा खान या जो भी गुरुओं को वजन किया कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा, तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ चलेगा, ऐसा वजन कर देते हैं जो 21 जन्म साथ चलेगा या खुट खजाना। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो, अब श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो अखुट खजानों में कैसे वजन होंगे। वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं वहां सतयुग में। यहाँ कितना डरते हैं, रात है, कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे। न शरीर छोड़ने वाले को दुख है, न देखने वालों को दुख है, जो शरीर छोड़ता उसको देखते भी तो होंगे, शरीर छोड़ता हुआ पर दुख दोनों को नहीं है। वहां कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे। जादूगर सौदागर रत्नागर ये शिव परमात्मा को ही कहा जाता है, तुमको भी साक्षात्कार कराएंगे कि ऐसे प्रिंस बनेंगे बाबा, हाँ साक्षात्कार कराएंगे तुम ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत माया प्रवेश हो जाती थी ना, हम मम्मा के शरीर त्यागने के बाद बहुत माया आ गई कईयों को, तो मम्मा मेरे में आई, मम्मा मेरे में प्रवेश हो गई, मम्मा मेरे द्वारा बोलती है बहुत, बाबा ने कहा हो ही नहीं सकता, मम्मा ने दूसरा जन्म ले लिया तो इसलिए हो ही नहीं सकता, ये माया है। फिर धीरे धीरे बाबा ने ये साक्षात्कार का पाठ बंद करा दिया, पहले तो बहुत होता था। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद करा दिया है, नुकसान हो जाता है, अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं, तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम, तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। कैसे सिद्ध होता है कि आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं? अब शरीर में अगर हो संस्कार तो शरीर के साथ वो संस्कार भी भस्म हो जाए, आत्मा जो संस्कार है वो तो आत्मा में है, तभी तो दूसरे जन्म तक ले जाती है वो संस्कार। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भी भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस, तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस शरीर द्वारा, तो ये नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तो पक्का पक्का याद करो, ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वो बाप भी है, टीचर भी है, बाप खुद कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु परम आत्मा कहा जाता है मुझे, क्योंकि परम हूँ ना, सब आत्माओं में सबसे ऊंची आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है, शरीर के नाम बदलते हैं। मैं परम आत्मा तुम्हारे मौखिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए ब्रह्मा बाबा को क्या कहेंगे, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं, बाबा इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने तो पुराना लॉन्ग बूट पहना है, कौन सा है लॉन्ग बूट, हाँ ब्रह्मा बाबा का तन, ये शिव बाबा का लॉन्ग बूट है। ये बाबा लॉन्ग बूट क्यों कहते थे, बाबा मुंबई जाते थे तो सवेरे सवेरे रमेश भाई उनको हैंगिंग गार्डन घुमाने ले जाते थे, बॉम्बे में हैंगिंग गार्डन है चौपाटी के सामने, और वही बाबा अधिकतर वही रहते थे, वही पर बाबा के लिए अलग मकान लेते थे। तो सवेरे सवेरे वो एक वहाँ बूट है लंबा बूट, और तो वहाँ पीछे से सीढ़ियाँ हैं, पीछे से सीढ़ियाँ बच्चे चढ़ते हैं, और फिर जैसे वो स्लाइड वो है क्या बोलते हैं, फिर नीचे फिसलने का है, तो ऊपर से फिर नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं। तो शिव बाबा का ये लॉन्ग बूट है, ब्रह्मा बाबा ऊपर से इनके तन में प्रवेश करते, तो बाबा ये मिसाल देते थे। तो बाबा कहते हैं ये शिव बाबा का लॉन्ग बूट है, शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है, तो पहले पहले ये बनते हैं तत्, पहले पहले ये बनते हैं तत्त्व, हाँ तुम भी इतने ऊंचे बनते हो। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, अब ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं, कई बच्चे कहते हैं कोई जवान भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो बाबा कहते हैं ये बूढ़ा इतना पुरुषार्थ कर रहा है, तुम जवान नहीं कर सकते हो। तो बाबा को कहते थे बाबा अब तो जवान है, तो बाबा कहते थे अच्छा ये बूढ़े को मत देखो, मम्मा को देखो, मम्मा कितनी जवान है, तो कितना पुरुषार्थ करती है, तो बूढ़े हैं वो कहेंगे बूढ़े हैं कैसे पुरुषार्थ करे, तो बाबा को देखो ये बूढ़ा ये जवान, तो दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं, जवान भी कर रहे हैं बूढ़े भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है, ब्रह्मा बाबा को ये नशा है, मेरे साथ शिव बाबा है, तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है, शिव बाबा मेरे में है तो घड़ी घड़ी उनकी याद आती है, बाबा मेरे साथ सोता भी है परंतु क्या नहीं करता, हाँ सोता तो है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकता है, गले नहीं लग सकता है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को, गले लगने लिए फिर शरीर चाहिए ना, तो गले नहीं लग सकता, भाकी नहीं पहन सकता, तुमको भाकी पहनते, तुमको भाकी पहनते हैं, हाँ कैसे बाबा बच्चे बाबा को भाकी भी पहनते थे गले लगते थे, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कैसे पहनेगा भाकी, तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने तो शरीर लोन लिया है, तुम उनको भाकी पहन सकते हो, ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के शरीर को भाकी पहनेंगे, पर ब्रह्मा बाबा तो नहीं पहन सकता, मैं कैसे पहनूं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे तो ये भी नसीब नहीं है, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। अब ब्रह्मा बाबा को ये नसीब नहीं है कि वो शिव बाबा को गले लगाए, पर हम बच्चों को ये नसीब है, हाँ ये गुलजार दादी के पास भी हम जाते थे, दादी आप कितनी लकी हो आप बाबा से मिलते हो, बाबा आपके तन में आते हैं, बाप दादा आप कितनी लकी हो, तो दादी कहती थी नहीं मेरे से लकी तुम हो, तब कहते थे बाबा दादी कैसे हम आपसे ज्यादा लकी हैं। तो देखो आप बाबा की मुरली सुनते हो, मैं तो सुनती नहीं हूँ, मैं तो सुन ही नहीं पाती हूँ बाबा की मुरली, क्योंकि बाबा इसी रथ में आते हैं, बाबा को मुझे तो वतन में बिठा देते हैं, तो इसीलिए तुम सुनते हो तो तुम ज्यादा भाग्यशाली हो। तो देखो ब्रह्मा बाबा कहते तुम मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो, तो क्योंकि तुम शिव बाबा के गले भी लगोगे, गोद में बैठोगे, मैं किससे गले लगूं। तो शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भागी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं, मुझे तो ये भी नसीब नहीं है। इसलिए तुम लकी सितारे गाए जा हुए हो, बच्चे हमेशा लकी होते हैं, बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास तुम ब्रह्मांड के विश्व के मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है, ये केवल मेरे पास है, वो तुमको नहीं देता हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ, तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस में चले जाते हैं, आगे ऐसे होता था, बूढ़े हुए तो बच्चे को विल किया सब प्रॉपर्टी और खुद वानप्रस में चले गए, साधु संतों के साथ रहते थे। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है, पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाता हूँ, आधा कल्प के लिए तुमको सुखी बनाए मैं वानप्रस में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है, सन्यासी आदि शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ, मैं एक ही हूँ ज्ञान सागर। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है, सदा अपने लख को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। वरदान, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव, वह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीर देखते हुए वह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला, क्या मिला ड्रामा का ज्ञान, कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है, इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो वह ड्रामा वह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है, जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विस्तार, जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे व अभ्यास होने के कारण, जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। अशरीरी बन जाओ, लगेगा जैसे 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। चलो, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा और हम उठेंगे क्योंकि अभी हमें जाना है। एंड डबल फॉरेनर्स टुडे, ऑल ऑफ यू विल बी गोइंग टू शांति वन टू मीट द सीनियर्स डाउन। सो दोज हु विश टू गो, दे कैन कैच द 9 o'clock बस एंड गो डाउन एंड यू विल मीट द सीनियर्स एंड गो अराउंड शांति वन टू। ओम शांति। ओम शांति। जो भी भाई बहने यहाँ बैठे हैं और पांडव भवन के आंगन में हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। आप सभी देख भी रहे हैं कि ओम शांति भवन का रिपेयरिंग कार्य चल रहा है और ये बहुत जरूरी भी है। और अभी जैसे कि ओम शांति भवन के अंदर हॉल में क्लास चलती है वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन बाहर जो है पहले उसकी रिपेयरिंग का कार्य आरंभ हो चुका है। तो इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए, अस्थाई समय के लिए, टूरिस्ट के लिए बंद किया है, क्योंकि पत्थर गिरे या कुछ ऐसे घिसाई धूल मिट्टी हो तो इसलिए बाहर का अंदर का नहीं है। अंदर मुरली क्लास ब्राह्मणों के लिए जो चलती है वो चलती ही रहेगी, और जो बाहर टूरिस्ट का है वो आज से बंद कर रहे हैं। तो ये आप सबको जानकारी रहे, और कोई ये ना कहे कि ये ओम शांति भवन देखने के लिए आए हैं और आपने देखने नहीं दिया है। तो ये सबको इस कार्य के अंदर विशेष सहयोग देना है, क्योंकि ये कार्य जितना जल्दी संपन्न हो, तो इसलिए टूरिस्ट के लिए कुछ समय के लिए बंद किया गया है और ऑफिशियल अथॉरिटीज को भी बता दिया गया है कि कुछ समय के लिए टूरिस्ट को ओम शांति भवन में आना बंद किया है। बाकी पांडव भवन में टूरिस्ट नहीं आएंगे, कोई खास होंगे तो उनको ला सकते हैं, नहीं तो बाहर ही जो है बाहर से ओम शांति भवन देख करके वह जा सकेंगे। और दूसरी बात आप सबको बता दें कि ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से हर साल आप सबको निमंत्रण मिलता है, 23 तारीख शाम को वहाँ विशेष भोजन का निमंत्रण तो दिया है, लेकिन बोर्ड पर भी 23 तारीख को लिखा जाएगा, वो आपकी जानकारी रहे।
आप सभी जान रहे हैं कि आज गुरुवार है, प्यारे प्यारे बाबा का दिन है। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए विशेष बाबा के साथ मिलन मनाने का दिन है, तो अभी हम सभी मिलकर के वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद चार लाइन में अमृत होगा, एक लाइन होगी केवल भाइयों की और दूसरी लाइन होगी डबल विदेशी भाई बहनों की, यहाँ पर जाए कैमरा इस साइड में, और बाकी दो लाइनें होंगी अन्य बहनों के लिए अमृत के लिए। इसलिए चार लाइन में ही अमृत पिलाया जाएगा। अभी हम सभी बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, उसके बाद चार लाइन में आप सबको अमृत मिलेगा। ओम शांति।
पल अविनाशी होते हैं।
पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों हो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत।
ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ, जैसे ही मैं वतन में पहुंची, बाबा के सामने वतन में पहले से ही बहुत से भाई बहने पहुंचे हुए थे, बाबा एक एक को दृष्टि के द्वारा, वरदान के द्वारा भरपूर कर रहे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, देखो इन सब लाडले बच्चों को तो मैं देख रही थी, और सबके ऊपर जैसे वरदानों की लाइट की किरणें पहुंच रही थी, और सबका बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा कि आज के दिन सभी बच्चे एक ही धुन, एक ही लगन बाप के प्यार में खोए रहते हैं और हर एक कोई रहता है कि मैं बाबा के पास जाऊं। बच्चों के संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा उनके संकल्पों का रिटर्न भी देते हैं। आज तो बाबा ने सब बच्चों को विशेष वतन में बुलाया है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे चलो। तो जैसे आगे जाते हैं, एक छोटी सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत सुंदर चबूतरा बना हुआ है और उसमें ऐसे दिखाई दे रहा था कि ईष्ट देव और अवतार के रूप में, और उनके सामने बहुत से दूर दूर भगत अपने ईष्ट को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब इस पहाड़ी पर चलो। फिर दूसरी तरफ देखा, एक और पहाड़ी थी, पहाड़ी के साथ पीछे से एक सुंदर सा ऐसी डिजाइन में, जैसे फाउंटेन की तरह डिजाइन में एक वृक्ष था और उनकी हर टहनी के ऊपर फरिश्ते दिखाई दे रहे थे। और तीसरी तरफ देखा, एक और स्थान था, वो पहाड़ी भी नहीं थी, थोड़ा समतल दिखाई देता था, उसके ऊपर बहुत सुंदर वैरायटी फलों के बगीचे दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे जिसको भी जाना है इन तीनों में से चलो। तो सारे बच्चे पहले पहुंचते हैं पहली ही पहाड़ी पर। तो बाबा ने उनको कहा कि अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिको। तो बाबा बच्चों को याद दिला रहे थे कि संगम युग के अंदर आप बच्चों को विशेष दो पार्ट मिले हैं। एक है आप ही भक्तों के लिए, विश्व के लिए पूर्वज हो, आप ही सबके लिए ईष्ट हो। उस स्वरूप के द्वारा सबको, विश्व को कुछ अनुभव कराओ। तो जैसे उस स्थिति में बैठते हैं और सबके पास बहुत कुछ कामनाएं जो लेकर के बैठती है, उनके पास एक किरण सी आती है, उनको लगता है कि हमारे पूर्वज, हमारे ईष्ट हमारी पुकार सुन रहे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं और ऐसे मस्तक नीचे झुका करके अपना थैंक्स प्रकट करते हैं। फिर दूसरे पहाड़ी पर तरफ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, इस स्वरूप के अंदर टिको। तो वो फरिश्ते बन करके जैसे पहुंचते हैं, बाबा ने कहा अभी समय जो है ऐसा आ रहा है कि बच्चों को हर बात से न्यारा और प्यारा बन करके आने वाली बातें और आने वाली समस्याओं से भी डिटैच होकर के हल्का स्वरूप फरिश्ता बन करके सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाना है और आत्माओं को ऐसा अनुभव कराना है कि परमात्मा ही हमारा साथी है, वो अनुभव कराना है। फिर तीसरे तरफ भी बाबा ने सब बच्चों को ले गए। तो बाबा ने कहा, बच्चे जो भी फल लेना है वो ले लो। तो सब बच्चे क्या करते हैं, वो फल लेने के लिए जंप करते हैं और कोई हाथ लगाता है लेकिन फल कम आता है। तो बाबा ने कहा क्यों। तो बाबा ने कहा, बच्चों को ये बात का ध्यान रखना है कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, जैसे जैसे संगम का युग आगे बढ़ता है और अपनी नई दुनिया नस्तिक आती है, उसमें विशेषता ये है कि पुरुषार्थ कम और प्राप्ति ज्यादा है। जैसे ही अपने परफेक्शन की ओर जाते हैं तो पहले बहुत पुरुषार्थ किया और अभी जो कर रहे हैं वो कम और उसमें प्राप्ति ज्यादा, लेकिन बच्चे कई बातों की कंफ्यूजन में रहते हैं। हमारा पुरुषार्थ ठीक नहीं है, हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चों को भी सोचना नहीं है, एक दृढ़ संकल्प करो और दृढ़ संकल्प करते ही वो स्थिति का अनुभव और प्राप्ति का अनुभव करेंगे, क्योंकि अभी समय है सर्व संपन्न बनने से साथ साथ परमात्मा प्यार की प्राप्ति और उसकी अनुभूति और उसके द्वारा दूसरों को अनुभव कराना। तो बाबा ने कहा कि समय नजदीक आता जा रहा है और सेवा का लोगों के सामने बाप की प्रत्यक्षता का समय भी नजदीक आ रहा है और बच्चों की संपन्नता का समय भी नजदीक है। तो बच्चों को विशेष इस बात का ध्यान देना है कि दृढ़ संकल्प और अपने ही ओरिजिनल स्वरूप की स्थिति। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि अभी समय के जो परिवर्तन में बच्चों को जो विशेष मदद करेगा वो है साइलेंस की शक्ति। तो जैसे साइलेंस की शक्ति का अभ्यास करेंगे उससे बच्चों को समय की भी बचत और पुरुषार्थ भी कम होगा, प्राप्ति भी अधिक होगी। फिर जैसे बाबा ने बच्चों को कहा उस स्वरूप में टिको तो सबके सामने इतने सुंदर फल और चारों तरफ से ऐसे ऊपर से लाइट की किरणों के द्वारा हर एक के पास डायमंड पहुंच रहे थे। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को इस स्वरूप में देखना चाहते हैं, मेरे बच्चे सदा संपन्न हैं और संपूर्ण स्थिति का अनुभव करें और उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। फिर बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। बाबा कह रहे थे बच्चे बहुत लाडले हैं, बहुत अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ढीले होते हैं, इसलिए बाबा भी उनको विशेष पुरुषार्थ कराने के लिए बीच बीच में बच्चों के सामने जाकर उनको अनुभव भी कराते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। फिर बाबा को जिन्होंने भोग के लिए कहा था बाबा को समाचार दिया, बाबा ने सबको याद प्यार दिया। ओम शांति।